नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 10 वर्षों में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि की अफवाहों को खारिज किया। लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया। लोकसभा में ध्वनिमत से वित्त विधेयक पारित। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 10 प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार किया और छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ हुआ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू करने की मंजूरी दी। इस पर 28,840 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आएगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसमें Tier 2 और Tier 3 के शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को किफायती हवाई यात्रा सुगम होगी।
उड़ान 2.0, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 से और 5 साल की अवधि के लिए 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है।
कैबिनेट ने 1,800 करोड़ रुपीज का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस हुई है, फेशियल रिकॉग्निशन, आयरिस रिकॉग्निशन, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को भी मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि और पेरिस समझौते के अंतर्गत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला है। पश्चिम एशिया मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, CPIM सांसद जॉन ब्रिटास और समाजवादी सांसद धर्मेंद्र यादव तथा अन्य विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में उपस्थित थे। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक में वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान है। सदन ने सरकार के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है।
We have exempted the basic customs duty.
हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा, जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं?
In hospital and who have to buy these expensive medicines.
संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विधेयक में ट्रांसजेंडर की श्रेणी को फिर से परिभाषित करने, स्व अनुभूत लैंगिक पहचान के प्रावधान को हटाने और कई सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों के साथ ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्तियों को इसके दायरे से बाहर करने का प्रयास किया गया है।
ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता मिलती रहेगी और उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यह अधिनियम हमारी सामूहिक अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। यह ट्रांसजेंडरों को सक्षम बनाने वाला है, सशक्त बनाने वाला है और समुदाय को उसको गौरव लौटाने का प्रयास है जिसे लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि कार्य सलाहकार समिति में पूर्व निर्धारित निर्णय के अनुसार आगामी शनिवार और रविवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कल एक राजपत्रित अवकाश के कारण संसद की बैठक नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। मैं बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार पीएनजी विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन संबंधी आवेदन शुल्क और स्वीकृत समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए कल गजट अधिसूचना जारी की गई। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 50 भारतीय नाविकों को स्वदेश लाया गया है।
पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसके 540 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन से संबद्ध रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए कार्यनीतिक उपायों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा पर मजबूत ढांचे के महत्व पर श्री सिंह ने कहा कि BRO एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और संपर्क को एकीकृत करता है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है और प्रमुख नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। असम में आज मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मध्य असम में 3 बड़ी रैलियां की। एक रिपोर्ट।
सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू किए जाने के साथ ही असम में सियासी माहौल और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। कल उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार होने के बाद प्रमुख दलों ने राज्य भर में रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। कल नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। ऐसे में अब सभी की नजरें 9 अप्रैल के मतदान के लिए उम्मीदवारों के अंतिम समीकरण पर टिकी है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, गृहमंत्री ए नमस्वियम, विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम, डीएम के नेता और विपक्ष के नेता आर शिवा और कांग्रेस सांसद तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वी वैथिलिंगम प्रचार कर रहे हैं। केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। रथिन्द्र नाथ बोस को कूचबिहार दक्षिण से मैदान में उतारा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 10 प्रमुख तस्करों को पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये गिरोह भारत नेपाल सीमा के रास्ते हथियारों की तस्करी करता था और उन्हें दिल्ली NCR और अन्य राज्यों के आपराधिक गिरोहों को देता था। छत्तीसगढ़ में आज शीर्ष माओवादी पापा राव समेत कुल 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में 7 महिलाएं शामिल हैं। पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम था। संस्कृति मंत्रालय ने दुनिया भर में भारत की समृद्ध और विविध संगीत परंपरा का प्रसार करने के लिए YouTube के साथ आज एक समझौता किया। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक लोक और जनजातीय संगीत को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
आज संस्कृति मंत्रालय और यूट्यूब के साथ में ये जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, मैं ये मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इन दोनों दिशा में आज का ये एमओयू इस विषय को आगे बढ़ाने, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने, भारत की संस्कृति को विश्व पटल तक पहुँचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा।
आकाशवाणी कल से अपने सुबह के प्रसारण की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण से करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देश में राष्ट्रगीत के 6 श्लोकों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी के सभी स्टेशन कल से राष्ट्रगीत का पूर्ण संस्करण प्रसारित करना शुरू कर देंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के युद्ध मामलों के उपमंत्री एल्ब्रिज कोल्बी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1205 अंक बढ़कर 75273 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 394 अंक बढ़कर 23306 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 93.97 दर्ज हुई। और वैश्विक कच्चे तेल के दाम 5% से अधिक घटकर अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग $99 प्रति बैरल के स्तर पर थे।
पहले खेलो इंडिया खेल आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो गए। रायपुर में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं का दायरा अब बढ़ता जा रहा है।
सारे देश में खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन होने लगा और इस श्रेणी में आज खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम भी जुड़ने जा रही है।
आज पहले दिन कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदक जीतकर पदक तालिका पर पहले तथा ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। बैंकॉक में भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में आज 2 कांस्य पदक जीते। महिला रिकर्व में रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिद्धि की तिकड़ी ने और पुरुष कंपाउंड वर्ग में रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज ने कांस्य पदक जीते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने अगले 10 वर्षों में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि की अफवाहों को खारिज किया। लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया। लोकसभा में ध्वनिमत से वित्त विधेयक पारित। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 10 प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार किया। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।